आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ग्रेट बैरियर रीफ हर साल लाखों पर्यटकों को ऑस्ट्रेलियाई तटों पर आकर्षित करता है, अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर उत्पन्न करता है और लगभग 9000 प्रकार की समुद्री जीव जंतुओं का आवास है। 2300 किलोमीटर से भी अधिक लंबा ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है और इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार आज संकट में है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस यानी कि एम्स द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि रीफ के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में 40 सालों में कोरल रीफ में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है। माइक एम्सली, जो एम्स के लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोग्राम के प्रमुख हैं, बताते हैं।
So the northern underwent a loss of about a quarter of the live coral cover, and the southern Great Barrier Reef was almost a third. There were still losses in the central Great Barrier Reef, but it was somewhat less than the other two regions at only 14%. So these are substantial impacts and evidence that the increasing frequency of coral bleaching is really starting to have detrimental effects on the Great Barrier Reef.
ये हानि 2023 और 2024 में हुए ग्लोबल मास ब्लीचिंग का हिस्सा थी, जब विश्व ने सबसे गर्म साल का अनुभव किया। माइक कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक तापमान वृद्धि इसका मुख्य कारण है।
Climate change is the number one cause of these mass coral bleaching events. There is a direct link between the increases of global greenhouse emissions, rising temperatures, sea surface temperatures that lead to these heat stress events and mass coral bleaching.
लेकिन स्थिति अभी भी मुश्किल है।
And because we came off such a hard, a high base, this has somewhat cushioned the impact of the 2024 bleaching. And coral cover has declined to about near the long-term average. However, this isn't to underscore the seriousness of the impacts. While there's still a lot of coral cover out there, these are record declines that we have seen in any one year of monitoring.
एम्स की कोरल रीफ इकोलॉजिस्ट डेनियाला सेसरेली के अनुसार, कोरल डेथ्स में ये उतार चढ़ाव बायोडायवर्सिटी पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।
Biodiversity loss does seem inevitable, and that's showcased by this dominance of fast-growing corals. If you can imagine that after a bushfire, what grows back first and really quickly covers the earth are grasses and bushes, but then you know that we're still missing the trees until there's more time between the next bushfire. And on coral reefs, it's exactly the same. The fast-growing corals start the recovery, but we need more time for there to be the full biodiversity of corals that includes the slower-growing, more robust corals as well. And we do need that biodiversity to keep reefs healthy.
ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब फेडरल सरकार अपने 2035 के जलवायु लक्ष्य पर विचार कर रही है, जो पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए है, और इसका अगला लक्ष्य अगले महीने घोषित किया जाएगा। क्लाइमेट काउंसिल और क्लाइमेट नेटवर्क के एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर सरकार से कार्रवाई चाहते हैं। यूगव द्वारा जुलाई में किए गए इस सर्वेक्षण में 1,500 से अधिक मतदाताओं ने कहा कि 70% ने माना कि सरकार को जलवायु परिवर्तन से होने वाले बुश फायर्स जैसे खतरों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मतदाता वर्ग में 68% जेनजी के मतदाताओं ने भी माना कि सरकार को 2035 के लिए मजबूत जलवायु लक्ष्य तय करने चाहिए। हमने बात करी एक ऐसे ही जेनजी से, 23 साल के वंश धवन, जिन्होंने वीगन लाइफस्टाइल को अपना लिया है, कहते हैं।
गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्लीन एनर्जी जैसे सोलर विंड प्रोजेक्ट्स को, और फॉसिल फ्यूल से हमें फास्ट ट्रांजिशन करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पोल्यूशन के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए। मरीन लाइफ और फॉरेस्ट जैसे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए। स्कूल्स में क्लाइमेट एजुकेशन काफी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ताकि बचपन से ही हम सब में अवेयरनेस है। फार्मर्स को सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स सिखाने चाहिए जो पानी बचा सके, जमीन की क्वालिटी मेंटेन कर सके और बेसिकली पोल्यूशन भी कम ही रहे इससे। ये सब चीजें सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि आई थिंक इकोनॉमी और हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे।
वंश का मानना है कि आज की युवा भी इस पहल में मदद कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीगन डाइट फॉलो करता हूँ जिससे क्लाइमेट हीटिंग एमिशंस, वाटर पोल्यूशन, लैंड यूज 75% तक कम हो जाता है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन 66% तक कम होती है और वाटर यूज 54% तक रिड्यूस होता है। मतलब हम सिर्फ अपना खाना बदल कर एनवायरनमेंट पर एक मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं।
क्लाइमेट काउंसिल की मुख्य कार्यकारी अमांडा मैकेंजी कहती हैं कि मतदाताओं का जलवायु लक्ष्य के लिए स्पष्ट समर्थन है।
We know that Australia's largest voting bloc, millennials and Gen Z, are concerned about climate change. And again, that shows up in this polling. Setting a strong 2035 climate target will help protect Australians from climate harm while driving new jobs and economic opportunities in industries like clean energy and green metals.
क्वींसलैंड सरकार के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ हर साल अर्थव्यवस्था के लिए 6.4 बिलियन डॉलर उत्पन्न करता है और 64,000 नौकरियों का समर्थन करता है जिनमें से अधिकांश पर्यटन क्षेत्र में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने पिछले महीने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे सूची में डालने पर विचार किया था और सरकार से पिछले साल की मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट पर एक अपडेटेड रिपोर्ट भी मांगी है। SBS न्यूज की एडविना ग्विनन की इस रिपोर्ट को आपके लिए पेश किया SBS हिंदी से इति दीवान ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।